पहला राजा अध्याय तीन। अब सुलेमान ने पत्नियां इकट्ठा करना आरंभ की जिसकी शायद कोई गिनती नहीं थी। अध्याय तीन पद एक। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपना ना बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा। सबसे पहले उसने फिरौन की बेटी को अपनी पत्नी बनाया, उसके लिए उसने यरूशलेम में घर बनवाया, परंतु वो परमेश्वर का भवन बनवाना चाहता था, अर्थात यरूशलेम का मंदिर। अध्याय तीन पद दो और तीन। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वो ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, जो मूर्ति पूजकों की विधि थी। अध्याय तीन पद चार। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। उसने ऊंचे स्थानों पर बड़ी बलि चढ़ाई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस पशुओं को बलि करके जला दिया जाता था। इस तरह की बड़ी बलियां मेल बलि या मेल बलि के समान होती थी जिसमें उत्सव मनाया जाता था। वहां भुना मांस खाने के लिए पशु बलि होती थी। वे परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे। दूसरे शब्दों में उनके विचार में वे कहते थे, परमेश्वर हम तुझे बलि चढ़ाते हैं। ये एक प्रकार की स्वीकृति होती है कि परमेश्वर सब अच्छे वरदानों को देने वाला है। परंतु फिर वे मांस भूनते और मांस खाते, बड़ा उत्सव मनाते थे और सभी इसमें से खाते थे। आपको याद होगा कि वे पर्व के दिन कहलाते थे क्योंकि वे परमेश्वर के सन्मुख आते थे। ये उत्सव मनाने का और पर्व का समय होता था क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी उपासना उल्लास और आनंद से की जाए। मुझे नहीं पता लोगों में ये धारणा कहां से आई कि परमेश्वर की आराधना उदासी और विलाप के साथ की जानी चाहिए। ये अनर्थकारी है कि कलीसिया के इतिहास में एक ऐसा समय था जब आप जितना गंभीर दिखे उतना ही अधिक आपको धर्मी समझा जाएगा। इसलिए सब धर्म सेवक अधिक से अधिक गंभीर रहना चाहते थे। वे अपनी आवाज को भी गंभीर रूप देते थे कि वे आत्मिक और धार्मिक लगे। भाई, तुम्हें वास्तव में समारोह को और अधिक गंभीर दिखना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि आप बहुत धार्मिक हैं। और यदि आप हंस दिए तो ये माना जाता था कि आप अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। कहने का अर्थ यह है कि वे प्रभु की आराधना में लोगों को आनंद से नहीं आने देते थे। परंतु परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसकी आराधना आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, सहभागिता के साथ करें, क्योंकि ये आनंद मनाने का और खुश होने का अनुभव है। परमेश्वर के साथ सहभागिता आनंद का सबसे बड़ा अनुभव होता है और आप परमेश्वर के साथ सच्ची सहभागिता करके लौटेंगे तब आपकी आत्मा आनंद से पूर्ण होगी और आपका मन शांति पाएगा और प्रभु की महिमा और भलाई में मग्न होगा। सुलेमान ने वहां 1000 पशुओं की बलि चढ़ाई। ये बड़े पर्व का समय था, इसलिए बहुत मांस खाकर उसे नींद आने लगी और वो सोने चला गया। तब उसको एक सपना आया और सपने में परमेश्वर प्रकट हुआ और कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वो मांग। यदि परमेश्वर यही आपसे कहे तो आप क्या मांगेंगे? यदि आप वास्तव में परमेश्वर की ओर सच्चे हैं और यदि परमेश्वर कहे मांग जो कुछ तू चाहे तो आप क्या कहेंगे? आपके उत्तर से प्रकट हो जाएगा कि आप अपने स्वभाव में शारीरिक या आत्मिक है। यदि आपकी इच्छा धन संपत्ति की है, यदि आपकी इच्छा यश और सम्मान या महिमा की है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप माया जाल में फंसे हुए हैं कि कैसे भी एक दिन मैं शारीरिक संतुष्टि पालूं। ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु यदि आपका उत्तर है ओ परमेश्वर, मैं तेरे साथ निकट संबंधों में चलता हूं और प्रभु तू जैसे चाहता है मैं वैसा बन जाऊं, या आपका उत्तर आत्मिक चीजों की प्राप्ति का है, तो ये प्रकट होता है कि आप वास्तव में हृदय से उसकी बातों के पीछे हैं, क्योंकि आप आत्मिक लाभ की इच्छा रखते हैं। इसलिए सुलेमान ने कहा, प्रभु तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है और तेरी प्रजा की गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि मैं बालक की नाई हूं। मैं नहीं जानता कि एक राजा को क्या करना चाहिए। मैं लोगों के सम्मुख भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। प्रभु बहुत से मुख्य निर्णय लेने हैं और लोग मेरी ओर न्याय के लिए देख रहे हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऐसी समझ दे कि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। और ये प्रभु को अच्छा लगा और प्रभु ने उससे कहा, अध्याय 2 पद 11 और 12, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। जब आप अध्याय 4 के पद 29 से लेकर पद 34 तक पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय को समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों से भी बढ़कर बुद्धि थी, वो तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। फिर उसने लेबनोन के देवदारों से लेकर भीत में से उगते हुए जुफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने समझने के विवेक का वरदान मांगा है मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा वो भी मैं तुझे देता हूं, और यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। ये प्रतिज्ञा भी शर्त पर आधारित है, परंतु मैं तुझे इससे ज्यादा देता हूं जो तूने नहीं मांगा, जो तूने मांगा वो और अधिक देता हूं। ये सिद्धांत मसीह ने भी बताया था, मती 6 अध्याय 33 पद, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएंगी। हमारे लिए ये सोचना कि धन संपत्ति आत्मिकता या सदाचार की निशानी है, तो जान ले कि धन सदाचारी नहीं दुराचारी होता है। धन सुलेमान के लिए बर्बादी का कारण बन गया था। ख्याति बर्बाद कर सकती है, सुलेमान के साथ ऐसा ही हुआ। बाइबल कहती है भजन संहिता 62:10 पद, उस पर मन ना लगाना। धन संपत्ति बढ़ाने का यत्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य या महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। 1 तिमोथियस 6:9 पद, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बाइबल ये भी कहती है भजन संहिता 62:10 पद, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। तुम्हारा मन प्रभु पर लगा रहे, धन पर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो। परमेश्वर ने उसके मांगने से अधिक देने की प्रतिज्ञा की। यह परमेश्वर के अनुग्रह का एक चिन्ह है, उसके मांगने से अधिक देना। एफिसियों की पत्री 3:20 पद, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर की इच्छा अपनी संतान को अच्छे उपहार देने की है और इसमें उसे आनंद आता है। परमेश्वर देकर खुश होता है, जैसा माता पिता जो दे सकते हैं देकर अपने बच्चों को आनंदित होते देखते हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी संतान को देकर खुश होता है। 3:15, तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वो यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार की। होम बलि समर्पण की बलि है, जिसका अर्थ है मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता हूं। मेल बलि सहभागिता की बलि है, अर्थात परमेश्वर की सहभागिता में जुड़ जाना है। दो वेश्या सुलेमान के पास आई, वे साथ रहा करती थी। एक ने कहा, हम दोनों को बच्चे हुए, परंतु इसका बच्चा रात को सोते समय दब गया और धम घुटने से मर गया। इसने मेरे बच्चे को मेरे नजदीक रख दिया और मेरे जीवित बच्चे को ले लिया। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ इसका। और वे दोनों बच्चे पर हक जमाती रही। इसलिए सुलेमान ने कहा, एक तलवार ले आओ और जीवित बच्चे को दो टुकड़े कर दोनों को आधा आधा दे दो। बच्चे की सच्ची माता ने कहा, ओ नहीं नहीं नहीं, बच्चा उसको ही दे दो, इसे मारो मत, उसी को बच्चा दे दो। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, ओह नहीं, वही ठीक रहेगा, इसके दो टुकड़े करके बांट दो। सुलेमान ने कहा, बच्चा उसकी माता को दे दो। सब लोगों ने ये सुना और इस अनोखे मामले को सुलझाने पर सुलेमान की बुद्धि पर अचंभा किया।